कर सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर खिवैया सब चिंता फिकर देह दुनिया हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। ओम शांति। आज भट्टी के बीच हमारे सामने डॉक्टर श्रीमंत भाई पधारे हैं। हम सब एक हाथ की ताली से दिल से आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ऐसे तो आप सभी डॉक्टर श्रीमंत भाई को लगभग पहचानते होंगे, क्योंकि आपके प्रोग्राम्स पूरे भारत में जगह जगह होते रहते हैं। आप तो बाबा के संपर्क में करीब 1986 से आए, और जब से हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल भी शुरू हुआ और 91 से आप इसी हॉस्पिटल में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हो। ऐसे ऑपरेशन के समय एनेस्थेसिया पेशेंट को दिया जाता है, आप उसके स्पेशलिस्ट कहेंगे, लेकिन देखा कि कई पेशेंट डायबिटीज के कारण बड़े हैरान होते और इसी कारण कई कॉम्प्लिकेशंस खड़े होते, तो आपको बड़ा रहम आया और दिल हुई कि मैं इस क्षेत्र में भी स्पेशलिस्ट बनूं। तो 12 साल पहले आपने ये सेवाएं तो देते रहते थे, लेकिन उसके दौरान भी आपने पढ़ाई पढ़ने के लिए फिर से मुंबई गए और वहां से ये डिग्री डायबिटोलॉजिस्ट की लेकर के उसमें आगे बढ़े, और उसके बाद हम जानते हैं कि जगह जगह आपने डायबिटीज अवेयरनेस के कई कार्यक्रम आयोजित किए, कईयों ने आपको समय प्रति समय निमंत्रण देते रहे, क्योंकि सबको अच्छा लगता था, अच्छा इस रीति से कि पेशेंट को बड़ी राहत और उसमें फायदा अनुभव हो रहा था। जिस आधार से आपकी डिमांड बढ़ती गई, तो हर सैटरडे संडे जैसे काफी सालों से यहां नहीं होते, कहां न कहां प्रोग्राम्स में दौड़ते रहते हैं, और हम देखते हैं कि आपका भी संयम मन पर या तन पर कर्मेंद्रियों पर बहुत है, जिस कारण जब से हमने देखा है, जब से आप यहां आए हो, तब से जैसे हैं वैसे ही, कोई वेट में फर्क नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात हम देख सकते हैं कि इतना मेंटेन किया है। पहले आपने ही अपने पर इतनी जागृति रखी है, नहीं तो ऐसा तो नहीं होगा, हम 30 साल पहले जितने होंगे उतने ही अभी होंगे, बढ़ जाएंगे लगभग मेजोरिटी, लेकिन आप वही वेट से और वही पर्सनालिटी से आगे बढ़ रहे हो जी। तो कई ऐसे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं और उसमें पेशेंट अनुभव करते हैं कि डायबिटीज कम भी हो रहा है, वेट भी कम हो रहा है, एक्सरसाइज डाइट और ये आपके मेडिटेशन जो सिखाते हो, तो आपका भी दोनों में बैलेंस है, तन का और मन का, मन मेडिटेशन, तन ये जो आप डॉक्टर हो शारीरिक रूप से, लेकिन हम कहेंगे डबल डॉक्टर हो। तो आज भी हेल्थ के साथ साथ थोड़ा मेडिटेशन भी लेंगे, टच करेंगे। तो आपने अभी तक तो कई डायबिटीज अवेयरनेस के कैंप किए, लेकिन अभी 3-4 मास से आपने डायबिटीज पेशेंट के लिए रेसिडेंशियल शिविर शुरू की है, और उसका कारण आप उस क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हो, वो शुरू किया, जिस कारण वो दुनिया के आगे रख सकते प्रूफ कि देखो इतना फायदा हो रहा है, और उसकी शुरुआत कहो और रिसर्च के लिए जो कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी उनको परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा कुछ विधि से पास होना पड़ता, वो भावनगर मेडिकल कॉलेज से आपको ये प्राप्त हुआ है। वहां भी लास्ट मंथ में ही एक रेसिडेंशियल शिविर भी रखा था 5 दिन के लिए, और नडियाद जहां हमारा रिट्रीट सेंटर है वहां भी 2 शिविर इसी रिसर्च के कनेक्शन में आपने कराया, और फिर हर मास फॉलो कर रहे हो, हर मास वहां जाकर के उन पेशेंट का रिजल्ट अब तक का क्या है वो रिपोर्ट लेकर के कलेक्ट कर रहे हो, इसलिए इतने इंटरेस्टेड है विशेष डायबिटीज पेशेंट के लिए। लेकिन आज हमारे बीच दोनों बातों को लेकर आए हैं, तो हम बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं, और साथ साथ आपका अनुभव युक्त जो आपके पास अनुभव है, जो नॉलेज है दोनों प्रकार की, बाबा की और दुनियावी जो पढ़ाई की है, उनको साथ में रख करके कैसे आगे बढ़ रहे हो वो हमारे सामने रखेंगे। तो मैं डॉक्टर श्रीमन भाई को अभी निवेदन करती हूँ कि इस दिशा में आप अपना स्पष्टीकरण देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, और साथ साथ आज मधुबन तपोभूमि में मेरे मीठे मीठे तपस्वी भाई बहने, आप सभी का सादर स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप सभी बाबा के घर में विशेष योग भट्टी के लिए, तपस्या के लिए आए हुए हो, बहुत सुंदर अवसर है। मधुबन जब भी हम आते हैं, मौका मिलता है, दिल गदगद उठता है, क्योंकि मधुबन तपोभूमि का वाइब्रेशंस, वातावरण इतना श्रेष्ठ है, ऑटोमेटिकली दुनिया सब कुछ भूल जाते हैं। मेरा परिचय करा रही थी बहन जी, वास्तव में मैं जो डायबिटीज का प्रोग्राम शुरू किया आज से लगभग 15 साल पहले, मैंने देखा कि हमारे परिवार में ही, हमारे बीके परिवार में ही, बाहर वालों को तो है ही, दिन प्रतिदिन डायबिटीज बढ़ती जा रही है। तो मैं स्टेज पे जाके बाप दादा को डायरेक्ट पूछा कि बाबा डायबिटीज ऐसे बढ़ती जा रही है, मैं ये सेवा करना चाहता हूं। बाबा ने कहा करो बच्चे, बहुत अच्छा करो करो करो। फिर मैंने 25 साल MBBS पूरा करने के बाद, फिर कोई दोबारा पढ़ता है, अपना डिसिप्लिन चेंज करता है, लेकिन मैं पुनः बॉम्बे नहीं, चेन्नई गया, कम से कम 25 बार गया होगा, चिदम्बरम गया, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, और वहां CMC वेलोर गया, मैं डिप्लोमा किया, मास्टर किया, बहुत सारे कोर्सेज किया, और 12 साल से हम ग्लोबल हॉस्पिटल में डायबिटीज डिपार्टमेंट शुरू किया। जब शुरू किया था मेरे पास बैठने के लिए भी चेयर नहीं था, मैं पेशेंट, 4 पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके खड़े खड़े प्रेस्क्रिप्शन लिखता था। और आज हमारे हॉस्पिटल का सबसे बिगेस्ट डिपार्टमेंट आके देख लेना, ये खुशखबरी नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि दिन प्रतिदिन जिस प्रकार डायबिटीज बढ़ती जा रही है, वास्तव में हम बाबा के योगी बच्चों को भी बहुत इसके लिए खबरदार रहना जरूरी है, क्योंकि जीवन में निरोगी रहना कौन नहीं चाहता है, और योगी जीवन में खास अगर हम निरोगी रहेंगे तो बाबा कहते हैं संगम युग में जो निरोगी है बहुत भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि वो अपना समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन पुरुषार्थ में, सेवा में, तपस्या में लगा सकता है। बीमार हो गए, आधे दिन हाय हाय करते रहेंगे, जितना धन है हॉस्पिटल में कमाएंगे, ना ढंग से योग लगेगा, ना पुरुषार्थ कर पाएंगे, ना सेवा में कुछ कर पाएंगे। इसलिए संगम युग में जो निरोगी है वो सबसे भाग्यवान है। बाबा कहते हैं बच्चे इस शरीर बहुत एक मूल्यवान रथ है, ब्रह्मा बाबा जैसे एक बहुत मजबूत रथ को भी शिवाबा ने चुना, 6 फुट कद था बाबा का, एकदम अजान लंबित भुजा। आप अगर महाभारत पढ़ोगे देखना, जो महावीर महाबलशाली होते हैं उनकी पर्सनालिटी के बारे में व्याख्यान है, अजान लंबित भुजा महाबाहो। तो ब्रह्मा बाबा की ऐसी पर्सनालिटी थी। 93 उम्र तक बाबा बिल्कुल कोई ना डंडा पकड़े ना चश्मा पहने, ऐसे फिट थे। इसलिए बाबा का रथ स्वयं परमात्मा शिव बाबा ने चुना। अगर हम संगम युग में बार बार बीमार होते हैं, कुछ हमारी गलतियां होती है, आप कहेंगे कर्मभोग है, आप सब कुछ एक्यूरेट, आपका खाना पीना जीवन जीने की कला बाबा जैसे सिखाते हैं, अगर सब कुछ एक्यूरेट आप पालन कर रहे हो, पूरा श्रीमत पर चल रहे हो, फिर भी अचानक बीमारी आ गई, किसी को कैंसर हो गया अपने हाथ में तो नहीं है, किसी को और भी बहुत सारी बीमारियां होती है जो अपने हाथ में नहीं होती है, उसको हम कर्मभोग कह सकते हैं। लेकिन जानबूझकर उंगली को अगर हम आग में डाल दें और कहेंगे ये मेरा कर्मभोग है, हाँ कर्मभोग तो है, जानबूझ के आप डाल रहे हो तो वर्तमान समय हमें किस प्रकार का जीवन जीना है हमें सीखने की आवश्यकता है। अगर हम श्रीमत विपरीत कुछ कर रहे हैं तो कर्मभोग है, भोगना पड़ेगा हमको। जैसे हमें पता है कि बाबा देखिए कर्मठ जीवन सिखाए, बाबा खुद ही मेहनत करते थे, बाबा के मैं हमारी दादियों को, लच्छू दादी को, प्रकाशमणि दादी को कितने बार पूछा होगा बाबा का भोजन कैसा था, बाबा क्या खाते थे, बाबा क्या करते थे, बाबा कितने बजे उठते थे। बाबा हमारे लिए एक आदर्श, एक रोल मॉडल है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं फॉलो फादर। ऐसे तो भगवान को तीनों लोकों में तीनों कालों में ऐसा कोई कर्तव्य बाकी नहीं है जो करना है, परंतु बाबा श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं हे अर्जुन संसार में तीनों लोकों में तीनों कालों में मुझे ऐसा कोई कर्म बाकी नहीं है जो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लोक संग्रह अर्थ मुझे संसार में आना पड़ता है, लोगों को श्रेष्ठ कर्म क्या करके दिखाना पड़ता है ताकि लोग अनुकरण करें। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमारा जीवन कैसा हो बाबा हमें सिखा के गए, तो हमें फॉलो फादर करना है। हम फॉलो फादर करने के बजाय फॉलो ब्रदर फॉलो सिस्टर करेंगे तो हम ही कर्म भोगेंगे। मैं एक सिंपल बात बताता हूं, मैं बाबा के बारे में कितने बार पूछा हमारी दादियों को कि बाबा क्या खाते थे, कैसे खाते थे, कब खाते थे। मधुवन में आज से 80 साल पहले बाबा ने जो नियम बना के गए हैं, देखो सवेरे 8 बजे तक सबका नाश्ता तैयार हो जाता है ना, नहीं 12-1 बजे तक लंच रेडी, शाम को 4 बजे हल्का सा कुछ नाश्ता, रात को 8 बजे डिनर रेडी। बाबा को क्या नहीं पता है कि हमें 4 बार हेल्दी रहने के लिए 4 बार खाने की आवश्यकता है। तो बाबा ने 80 साल पहले ये नियम बनाया था। आज हम कहेंगे नहीं नहीं 12 बजे तक पानी भी नहीं पीना, बहुत भाई बहने करते हैं ऐसे, फिर ऐसी हालत होती है बात मत पूछो। बाबा ने कभी नहीं कहा बच्चे तुम उपवास करो, भूख हड़ताल करो। आप देखना श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट शब्द में भगवान उवाच है, अति आहार अनाहार योगी का लक्षण नहीं है, अति निद्रा अनिद्रा योगी का लक्षण नहीं है, योगी माना बैलेंस लाइफ। तो बाबा हमें जिस प्रकार जीवन जीने की कला सिखाए हैं अगर हम अनुकरण करेंगे तो हम इस जीवन में बीमार होंगे ही नहीं। परंतु फिर भी अचानक कोई बीमारी अगर हमारी गलती नहीं है आ पहुंचती है, क्योंकि कलयुग में जब सब कुछ प्रदूषित है, जब हवा भी प्रदूषित है, पानी भी प्रदूषित है, सब कुछ प्रदूषित है, आप जो खाना खा रहे हो अनाज भी प्रदूषित है, उसमें सब्जी खाते हैं उसमें भी प्रदूषित है, तो कोई गारंटी देके नहीं कह सकता है कि मैं बिल्कुल कभी बीमार नहीं होऊंगा। कलयुग में अंततः अगर हमारी कोई गलती नहीं है अगर बीमारी हो जाती है, बाबा कहते कर्म भोग, क्योंकि 63 जन्म से तुम्हारे सिर पर इतने विकर्म का बोझा है, उसको योग बल से चुक्त करो, नहीं तो भोग बल से चुक्त करना ही पड़ेगा, अंत तक तो चुक्त करना ही पड़ेगा, बाबा परमधाम ऐसे लेके नहीं जाएंगे। इसलिए शारीरिक बीमारियां, कर्मभोग, ये अगर आ भी जाए लेकिन हमारी योग की शक्ति, योग बल ठीक है तो कर्म भोग पर कर्मयोग का विजय प्राप्त हो सकता है, जो प्रैक्टिकली मम्मा बाबा ने हमारे सामने करके दिखाया। अंत तक मम्मा के चेहरे से कोई को पता ही नहीं चलता था कि मम्मा कोई शारीरिक बीमारी है। मम्मा को, मम्मा को आप सभी देखे हैं, कोई देखे हैं मम्मा को हमारे में से? कोई दीदी है, बहुत अच्छा। हम लोगों तो देखा नहीं हम लोगों ने, परंतु अंततः मैं बहुत मेरा सौभाग्य कहूंगा, मैं जब से हॉस्पिटल बना 91 से आया, बहुत हमारी दादियों को, दीदियों को, बड़े भाइयों को नजदीक से देखने का मेरा सौभाग्य मिला, मुझे सौभाग्य मिला। मैं दादी संतावणी दादी जी को बहुत क्लोजली देखा हूं, दादी प्रकाशमणि जी को भी देखा हूं, बहुतों को देखा हूं, परंतु दादी संतावणी दादी जी को मैं प्रैक्टिकली देखा हूं, चेहरे से बता ही नहीं सकते हो कि बीमार। नर्स आके इतने बड़े बड़े सुइयां भी फोड़ते थे, चू तक भी नहीं, चेहरे में ऐसा भी नहीं, हाथ भी ऐसा भी नहीं, जैसे देह में रहते हुए विदेही। प्रैक्टिकली देखा हूं, मॉनिटर्स में क्या क्या रदम आ रहा है, रिपोर्ट्स कितना एकदम बिल्कुल एबनॉर्मल, चेहरा बिल्कुल नहीं बता सकते हो कि बीमार। बहुत बड़ी सिद्धि है। तो बीमारी तो आएगी। जगदीश भाई जी ने मुझे एक दिन पूछा, हमारे पढ़ाई में कितना सब्जेक्ट है? मैंने तुरंत जवाब दिया, भाई साहब 4 सब्जेक्ट है। कहते नहीं, तो बोला बताओ आप कितने सब्जेक्ट है? कहते 5 सब्जेक्ट है। तो बोला पांचवा सब्जेक्ट कौन सा है? कहते बाबा ने अनाउंस नहीं किया क्योंकि बच्चे दिल से कष्ट हो जाएंगे, और पांचवा सब्जेक्ट है कर्मभोग, सबको देना पड़ेगा, अंत में सबको देना पड़ेगा। अगर हमारी योग की स्थिति बहुत अच्छी है, भले शारीरिक बीमारियां हो परंतु हमें वो कोई तंग नहीं करेंगे। दुनिया वाले हाय हाय जैसे करते हैं, ऐसी स्थिति हमारी नहीं होगी। स्वयं दादी जानकी जी को देख लो, दादी जी कहती है मैं जब बीमार होती हूँ, हॉस्पिटल में होती हूँ, मैं ऐसी सोचती हूँ मैं ड्राइवर अभी फ्री हो गई, मैं आत्मा ड्राइवर, मेरी गाड़ी गैरेज में अभी सर्विसिंग हो रही है, होने दो मैं तो फ्री हूं। तो देह से बिल्कुल ये अलग भान, ये बहुत लंबे काल का अभ्यास का ही परिणाम है। जो बहुत समय से योग साधना द्वारा, तपस्या द्वारा देह से डिटेच होने का अभ्यास किए हैं, वही अंत में ये सिद्धि को प्राप्त करेंगे, और शरीर को जैसे वस्त्र समान उतारकर, जैसे मक्खन से बाल अलग हो जाता है, ऐसे ही बाबा कहेंगे बच्चे चलो घर, एक सेकंड में और शरीर होके उठ जाएंगे। अंत में बाबा हम सभी को एक ही सवाल पूछेंगे, सभी को एक सवाल, एक ही क्वेश्चन है। दुनिया में क्वेश्चन पेपर पहले आउट नहीं होता है, टाइम फिक्स होता है, यहां क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है लेकिन टाइम फिक्स नहीं है। कब वो टेस्ट पेपर हमारे जीवन काल में आएगा किसी को नहीं पता, और वो टेस्ट पेपर है अशरीरी भव। बाबा कहेंगे अशरीरी भव, जो एक सेकंड में शरीर का भान से अलग हो गया बाबा के साथ चल पड़ेगा। नहीं नहीं तो चिल्लाना पड़ेगा, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। वो दर्दनाक समय होगा। पढ़ाई हमारी अंतिम चरण में, सभी देख रहे हैं, साकार में पढ़ाई पूरी हो गई, रिवीजन कितने साल चल चुका है, अव्यक्त रूप में बाबा कितना हमको पढ़ा चुके हैं, वो भी अभी रिवीजन हो रहा है। तो एग्जाम कितना नजदीक है हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या हमारी प्रिपरेशन साधना ऐसी है? बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, अंत में बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है योग। इसी सब्जेक्ट में जो पास होंगे वही सत्ययुग में सूर्यवंशी बनेंगे, इसी सब्जेक्ट में जो फेल होंगे वो चंद्रवंशी बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे। तो योग सब्जेक्ट को साधारण नहीं समझना। बहुत सारे अव्यक्त महावाक्य के शब्द में बता रहा हूं। आप सभी बहुत बहुत सौभाग्यशाली में कहूंगा, पद्मापदम भाग्यशाली कहूंगा, ऐसे छोटा संगठन में तपस्या करना बहुत अच्छा। मुझे याद है हम जब शुरू शुरू आए थे सुखधाम में हमारी भट्टी होती थी और वहां जो हॉल है 30-40 भाई बने, दादी खुद आके घंटों तक बैठ के तपस्या कराती थी। दादियां सभी वरिष्ठ दादियां घंटों तक पिन ड्रॉप साइलेंस। 3 दिन भट्टी होती थी। मेरा अनुभव है मुझे लगता नहीं था कि मैं ये दुनिया में हूं, पांव नीचे है, इतना खाने के बाद भी जैसे कि भर गया और खाने की इच्छा नहीं। 1 घंटा सोने के बाद भी लगता था कि एकदम फ्रेश हो गया, एकदम लाइट लाइट लाइट, हल्का हल्का, मैं यहां हूं कि नहीं, ऐसा अनुभव होता। कितना घंटा बैठ जाओ नीचे पता ही नहीं चलता था कि मैं बैठा हूं कि नहीं। अगर हम योग साधना कर रहे हैं, क्या देहभान भूलता है अपने आप को पूछना है। मैं अगर बैठता हूं तो बिल्कुल एकदम लाइट लाइट हल्का, बिल्कुल शरीर जैसा है ही नहीं। कितने समय तक भी ऐसे बैठ जाऊं, हाथ पांव हिलाना ना पड़े, एकदम दृष्टि स्थिर हो जाए, अपलक नयन में मैं बैठ सकता हूं। ऐसा अभ्यास है, क्योंकि एक है साधारण योग, चलते फिरते बाबा को याद करना, ये साधारण योग है, इसमें कोई विकर्म दग्ध नहीं होगा, विकर्म नहीं होगा, पाप कर्म नहीं करेंगे क्योंकि बाबा को याद तो कर रहे हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं अभी ज्वाला स्वरूप पावरफुल मेडिटेशन करने की आवश्यकता है जिससे विकर्म दग्ध होगा। अनेक जन्मों का विकर्म दग्ध नहीं हुआ तो अंत में कर्म भोग द्वारा सजा खा के जाना पड़ेगा, पद भ्रष्ट भी होगा। इसलिए जब भी मौका मिले मधुबन तपोभूमि में तपस्या करने का जो सौभाग्य है, मैं तो कहूंगा आप सभी भाई बहने, बाबा के कितने लाखों भाई बहने हैं, देखो आप सभी को सौभाग्य मिला मधुबन में आके तपस्या करने का, तो कितना भाग्यशाली है। परंतु अपने आप को चेक करना कि मैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी, बाबा 5-5 घंटा पूरा बैठ जाते थे ऐसे राजा जैसे, ऐसे पीछे ऐसे कोई ऐसे सपोर्ट नहीं था। आप हिस्ट्री हॉल जाके देखिए जो संदलियां है वहां पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, बाबा पूरा एकदम अर्ध पद्मासन में पांव के पांव पर रखे ऐसे बाबा बैठ जाते थे 4-4 घंटा 5-5 घंटा। क्या हम बैठ सकते हैं? मेरे को अनुभव है, एक बार हम मधुबन निवासियों को बाबा ने कहा, मिल रहे थे बाबा, बाप दादा ने कहा आप मधुबन निवासियों को और गोरख धंधा तो है नहीं, पैसा कमाने का और कहीं जाने का, इलेक्ट्रिक बिल भरने का और कहीं, तो आप मधुबन निवासियों को कम से कम 8 घंटा पावरफुल मेडिटेशन करना चाहिए। फिर बाबा ने एक बात सुना के फिर बाबा ने कहा कम से कम 6 घंटा तो करो। फिर बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, 4 घंटा पावरफुल मेडिटेशन तो होना चाहिए। मैं उस साल सभी दादियों को, सभी वरिष्ठ भाइयों को, जगदीश भाई को, सभी को पूछा कि 4 घंटा पावरफुल मेडिटेशन कैसे होगा। सभी का एक ही उत्तर था, क्या उत्तर होगा, एक ही उत्तर था कि आप अगर 6 घंटा बैठ के तपस्या करते हो तो उससे 4 घंटा हो सकता है। खाली बैठ जाना तपस्या नहीं है। चले हम सभी मन बुद्धि को एकाग्र करें 1 सेकंड में परम धाम में, बिंदु, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, बस, और कुछ याद ना आए, एकदम बाबा में समा जाए, मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूं, बीज रूप हूं।
की
सुन रहा था, सभी दादियों ने कहा, वरिष्ठ भाई लोगों ने कहा कि आप 6 घंटा बैठ के अगर साधना करोगे तो 4 घंटा पावरफुल हो सकता है। हम चलते फिरते बाबा को जो याद करते हैं उसको पावरफुल योग नहीं कहा जाता है, उससे विकर्म दग्ध नहीं होगा, विकर्म नहीं होगा। इसलिए योग भट्टी करने की आवश्यकता है, बैठ के पावरफुल योग हो, एकदम देह भान भूल जाए। हमारे योग का जो राजयोग सिखाया जाता है, बाबा जो ये सिखाते हैं, ये वास्तव में खाली बैठ के योग साधना नहीं है। जैसे पतंजलि में भी जो योग दर्शन में अष्टांग योगा सिखाया जाता है, उसमें यम नियम प्रत्याहार बहुत सारी बातें सिखाई जाती है। इसी प्रकार राजयोगी जीवन में योग 2 घंटा बैठ के योग लगाने की बात नहीं है, योगी जीवन बाबा देखना चाहते हैं। ये हमारी दिनचर्या हो जानी चाहिए, योग हमारे संस्कार हो जाने चाहिए, बाबा ऐसा देखना चाहते हैं। क्योंकि अंत में बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हें बैठ के योग साधना करने का समय नहीं मिलेगा, तुम्हारी स्थिति होगी निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी। सेवा अलग करूं, योग अलग करूं, ऐसा नहीं होगा। अंत में जब थोड़ा सा साक्षात्कार होगा, देखना क्या होगा, इतने लोग दौड़ेंगे भागेंगे, बाबा कहते तुमको एक एक को 10-10 का सेवा करनी पड़ेगी, इतनी सेवा करनी पड़ेगी। तो अंत में मैं बैठ के कहीं तपस्या करूंगा, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, चारों तरफ इतना हलचल होगा। बाबा कहते निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनना पड़ेगा। लेकिन निरंतर योगी बनने के लिए पहले अभ्यास करना पड़ेगा लंबे समय तक। पहले बैठे बैठे जो बहुत सुंदर अभ्यास कर सकेगा, वही बाद में सेवा करते समय भी उसकी स्थिति पावरफुल हो सकती है। मैं जब शुरू शुरू में मधुबन आया था, उस समय हॉस्पिटल में इतनी सेवा नहीं थी, तो मैं एक दिन गुलजार दादी को पूछा कि दादी जी मैं शाम का समय फ्री हूं, तो मैं म्यूजियम जाके सेवा करूं या पांडव भवन जाके वहां मेडिटेशन करूं। दादी ने क्या उत्तर दिया होगा, दादी ने क्या उत्तर दिया होगा, बहुत युक्तियुक्त जवाब सुनिए। दादी ने कहा, अगर बैठे बैठे योग करते हो तो सिंगल कमाई, परंतु सेवा करते हुए बाबा को याद करके कर रहे हो तो डबल कमाई। लेकिन लेकिन सेवा करते समय देखो आपकी स्थिति कैसी है। अगर कोई आपको कुछ प्रश्न पूछा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्से से जवाब दे रहे हो, वहां अनेक प्रकार के लोग आएंगे, आपकी दृष्टिवृत्ति चंचल हो रही है, ऐसे सेवा नहीं करना बहुत अच्छा, वो सेवा जीरो है। आप पहले मधुबन जाके तपस्या करो, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ, फिर जाके सेवा करो, तो सेवा करने से डबल कमाई होगी। इसलिए बाबा ने कहा अंत में तुमको अलग सेवा करने का समय नहीं मिलेगा, अलग तपस्या करने का समय नहीं मिलेगा, निरंतर योगी निरंतर तपस्वी बनेंगे। तो उस स्थिति के लिए हम तैयार हैं। अगर हमको 24 घंटा भी सेवा दिया जाए, चिड़चिड़ापन ना आए, बिल्कुल एक स्थिति ऐसी हो सकती है, खुद को पूछे, हमें इतने अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए बैठे बैठे अभ्यास करके एकदम पावरफुल स्थिति बनाने की आवश्यकता है। इसलिए योग भट्टी बहुत जरूरी है जीवन में। दादी कहती थी बाबा हमको 14 साल तक सेवा नहीं कराए, पहले हमको तपस्या कराए, हमारी स्थिति बनाए, हमारी अवस्था बनी, फिर बाबा ने कहा जाओ तुम सभी शिव शक्ति सेना हो, समग्र विश्व में अभी संदेश दो। तो हम पहले अपनी स्थिति को मजबूत बनाए, अपनी अवस्था ठीक बनाए, फिर सेवा में लगेंगे तो सेवा की कमाई भी होगी, रिजल्ट भी दिखे देगा। तो यहां मधुबन में बाबा के घर में आए हैं, बहुत सुंदर अपना अवसर है, जितना हो सके अमृत वेला बहुत पावरफुल बनाए, क्योंकि 24 घंटे में से सबसे श्रेष्ठ समय अमृत वेला, वरदानी वेला है। इस समय जो बहुत प्यार से बाबा कहते बहुत प्यार से एकदम लगन में मगन हो जाते हैं बाबा की याद में, उनका जन्म जन्मांतर की भी कर्म दग्ध हो जाता है। सारा दिन जितना भी हम मेहनत करते हैं अमृत वेला बहुत सहज हो जाता है। जिसका अमृत वेला एकदम बहुत अच्छा, शाम का समय बहुत अच्छा, आदि भला अंत भला तो मध्य भला हुआ ही पड़ा है, सारा दिन बहुत सुंदर बीतेगा। तो यहाँ योग साधना में क्या अभ्यास करें, हमारे जो बाबा का जो राजयोग मेडिटेशन हम लोगों को सिखाते हैं इसमें चार अवस्थाएं हैं, चार स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप द स्टेज ऑफ इनिशिएशन, सेकेंड स्टेज इज द स्टेज ऑफ मेडिटेशन, थर्ड स्टेज इज द स्टेज ऑफ कंसेंट्रेशन और चौथा है स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। स्टेज ऑफ इनिशिएशन क्या है, जब हम बैठते हैं पहले अंतर्मुखता की स्थिति में आत्मचिंतन की स्थिति, अभ्यास करें कि मैं शरीर से बिल्कुल अलग मैं एक आत्मा हूं, एक लाइट हूं, एक ज्योति हूं, एक चमकती हुई ज्योति हूं, एक प्रकाश का पुंज हूं, एक दिव्य सितारा हूं, मैं जगमगा रहा हूं, यहां मैं हूं, लेकिन मेरा शरीर अलग है, बिल्कुल अलग है, मैं अलग हूं। ये अभ्यास पहले करें, जब ये अभ्यास अच्छी तरह से हो जाएगा देह एकदम हल्का हल्का हल्का, कितने घंटे भी बैठेंगे आप शरीर है ही नहीं, ऐसा लगेगा जैसे उड़ रहे हैं, कोई पोस्चर चेंज करने की आवश्यकता नहीं, इतना हल्का अपन अनुभव होगा, लंबे समय तक बैठ पाएंगे। नेक्स्ट कम्स स्टेज ऑफ मेडिटेशन, जब मेडिटेशन स्थिति आती है उस समय मेडिटेशन इज रिपीटेशन एंड रिसाइटेशन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ गॉड, पिता परमात्मा के गुणों को, उपकार को, स्वरूप को, एहसान को चिंतन करना, परमात्मा प्यार में खो जाना, लगन में मगन हो जाना, भाव विभोर हो जाना। तो परमात्मा के गुणगान करते करते बिल्कुल एकदम रोमांच हो जाए, आनंद अश्रु आ जाए, गदगद हो जाए, ओहो बाबा सचमुच में कितना भाग्यशाली हूं, संसार में करोड़ों मनुष्य अभी तक आपको ढूंढ रहे हैं, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, बाबा आपने तो कमाल कर दिया, नजर से निहाल कर दिया, बाबा मैं कितना खुशनसीब हूं। तो बाबा की गुणगान करते करते, उपकार को चिंतन करते करते बिल्कुल तन्मय हो जाए, उसका नाम मेडिटेशन है। तीसरा स्टेज, स्टेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें परमात्मा से सर्व संबंधों का रूहान करें, बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करें। जगदीश सही जी कहा करते थे कि बाबा कहते थे कि बच्चे एक दिन पूरा अनुभव करो, आज बाबा मेरा सखा है, बाबा मेरा फ्रेंड है, अनुभव करो सारा दिन बाबा के साथ हूं मैं, सारा दिन अनुभव होता है, अभ्यास होता है, देखो कब कब बाबा को भूल जाते हो। बाबा ने तो एक मुरली में ये भी कहा है, जो अष्ट संबंध का बाबा से निरंतर अनुभव करेंगे वो अष्ट रतन में आ सकते हैं। बाबा से जो हमारे अष्ट संबंध है, सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते भी अगर अनुभव हो, और बुद्धि कहीं जाएगी नहीं, ना व्यक्ति में ना सांसारिक किसी में, तो इसलिए अष्ट संबंध का अनुभव करना, सर्व संबंध का अनुभव करना, तब सारी दुनिया भूल जाएगी। देन कम्स द फोर्थ स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, चौथा स्टेज में कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, एकदम एकाग्र होके बहुत कम संकल्प चलेगा, एकदम बाबा के सन्मुख, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, एकदम बाबा सन्मुख है, साथ है, बिल्कुल बाबा के साथ मैं एकदम सामने हूं, कंबाइंड हूं। मैं एक बार, आप अभी तो मधुबन की रूपरेखा चेंज हो गया है, हम जब शुरू शुरू में 91 में आए हुए थे, आप शाम का समय आएंगे तो सामने पूरा आंगन में लाइन में सभी दादियां बैठे होंगे, हमारे जगदीश भाई जी भी बैठे होंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बाहर से आएगा तो मजाक है, उसका खुद के सूज का साउंड के लिए भी वो कॉन्शियस हो जाएगा, एकदम धीरे धीरे एकदम पिन ड्रॉप, घंटों तक बैठे हुए मैं देखा हूं। एक दिन मैं शांतावणी दादी को पूछा, दादी जी आप योग कैसे लगाते हैं बताओ ना, आप क्या सोचते हो? दादी जी क्या सोचना, क्या सोचना, बाबा के साथ तो कमेंट हो जाना, क्या सोचना, बाबा के साथ तो है ही ना, क्या सोचना। तो अंत में जब स्टेज ऑफ रियलाइजेशन होगा मन में सोच बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर। एकदम बाबा की सान्निध्य का, एकदम बाबा के साथ में एकदम हूं, वो पावरफुल स्टेज का अनुभव होगा, जिसमें जन्म जन्मांतर के भी कर्म दग्ध होंगे। एकदम लाइट हाउस माइट हाउस पीज रूप स्थिति का अनुभव होगा, जैसे पारस के संग में लोहा भी सोना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे बाबा के साथ में कंबाइंड हो बिल्कुल एकदम। कितना समय हम रह सकते हैं ऐसा, कोई सोच नहीं आए, बाबा बिंदु में बिंदु। मैं प्रैक्टिकली देखा हूं, यहां शुरुआत में जब दादी प्रकाशमणि जी को मैं पूछ रहा था कि दादी बाबा आप लोगों को कैसे तपस्या कराए, एक दिन दादी कह रहे थे कि आप मधुबन निवासी आए साल घर जाऊं करते रहते हो। बाबा ने 14 साल तक हमको अपने मित्र संबंधियों का पत्र भी पढ़ने नहीं दिए, चेहरा देखना तो बहुत दूर की बात है। 14 साल तक दुनिया से कटअप करके बाबा ने हमको तपस्या कराया, और आप लोग आए दिन जाऊंगा करते रहते हो। तो मैं दादी को बोला मैं भी 14 साल नहीं जाऊंगा, और सचमुच मैं 14 साल माउंट आबू छोड़ के नहीं गया था कहीं। तो उस समय बहुत जल्दी उठ के मैं आता था बाबा के पास, बाबा के कमरे में बैठता था लंबे समय तक। मैं बहुत बाबा के बच्चों को देखा हूं, उनको कोई नहीं जानते होंगे। आजकल जो बहुत अच्छा भाषण करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत जल्दी नामी ग्रामी हो जाते हैं, सभी पहचान लेते हैं उनको। लेकिन बाबा के दो प्रकार के महारथी हैं, एक सेवा के आधार से महारथी, दूसरा जो स्थिति के आधार से महारथी। हमारे विश्वरत्न दादा, विश्व किशोर भाऊ कौन से जाके चारों तरफ जाके सेवा किए? कुछ नहीं किए, बाबा की श्रीमत अनुसार जो बाबा सेवा दिए वही किए। परंतु उनकी स्थिति अवस्था जैसी थी, मैं तो अंत तक भी देखा हूं कैसे उनकी स्थिति थी, तो स्थिति के आधार से महारथी। बाबा कहते हैं ओ महारथी बच्चे, मेरे डायरी में उनका नंबर आगे है। तो हमारी स्थिति ऐसे पावरफुल बनाए, एकदम मजबूत बनाए, कुछ भी हो जाए बिल्कुल अच्छा लडोल स्थिर अवस्था। क्योंकि अंत समय में बाबा कभी नहीं पूछेंगे तुम कितने सेंटर खोले हो, कितने लोगों के सामने भाषण किए हो, कितने प्रोग्राम किए हो, कितना क्या किए हो, कुछ नहीं पूछेंगे। हमारी स्थिति कैसी है, हमारी अवस्था कैसे, कुछ भी हो जाए अचल अडोल स्थिरियम स्थिति है वो होगा जब पावरफुल अवस्था। मेरा अनुभव कहता है हम 3-4 घंटा अगर बैठ के एक ही स्थान पे बैठ के अभ्यास करते हैं तो धीरे 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 अवस्था हम बना सकते हैं। दादी एक बार कह रही थी कि हमको बाबा ने रात को 12 बजे उठा के सवेरे 5 बजे तक एकदम बैठा देते थे, 5-5 घंटा कितने सालों तक। मैं नहीं कहूंगा कि आप 12 बजे उठ जाओ, क्योंकि हेल्थ का भी नॉलेज होना जरूरी है। आप रात को अगर पूरा आकंठ भोजन कर लिया, गुरुपाक भोजन कर लिया, सवेरे जल्दी उठेंगे तो क्या होगा, इंडाइजेशन होगा, एसिडिटी होगी, बदहजमी होगी, बैठेंगे तो झुटका खाएंगे। बहुत हल्का भोजन, बाबा सारे जीवन काल में, लच्छू दादी कहती थी बाबा को सारे जीवन काल में 3 छोटी छोटी चपाती से 4 चपाती खाते हुए मैंने देखा। 3 खाते थे बाबा, बस छोटी छोटी 3 चपाती, वैरायटी सब्जी खाते थे। बच्चों को खातरी करने के लिए बाबा बहुत कुछ बनवाते थे, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट कर लेते थे। बाबा का भोजन बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। इसलिए सारे जीवन काल में बाबा को 2 बजे के बाद सोया हुआ किसने नहीं देखा। जगदीश साहिब भी कहते थे मैं 35 साल से भी ज्यादा मैं 2 बजे से पहले उठा हूं। तो अगर हम सारे दिन में अनेक सेवा में, गोरख धंधा में हम सभी बिजी तो रहते ही हैं, दिन में अनेक सेवा है, अनेक व्यस्तता में समय नहीं निकलता है बैठते भी, तो वो पावरफुल अनुभव नहीं होगा। इसलिए मेडिटेशन अगर अनुभव करना है, मैं कहूंगा सवेरे 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटा तो बैठ सकते हैं, कम से कम 2 घंटे का अगर सवेरे अभ्यास करें, कैसा अनुभव होगा आप एक दिन भी मिस नहीं करना, नियमित करना है। मैंने देखा है यहां बाबा के कमरे में कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनको कोई नहीं जानते, पार्टी में आते थे, दूर दूर से आते थे, एकदम बैठ के, आज वो भाई अभी शरीर छोड़ दिए होंगे शायद, एक कैप्टन थे, वो लंदन से आते थे, सिंगापुर में पहले जॉब करते थे, रिटायर्ड होके बाद लंदन में सेटल हो गए, आते थे, मैं देखता था पूरा घंटों तक, 2 बजे सार्प डॉट आते थे, मैं भी आता था तो 2 बजे देखता था आके बैठ गए, अपलक मैन पूरा ऐसे बैठे हैं तो बैठे हैं तो बैठे, 2 घंटा 3 घंटा बिल्कुल हिलते रहे थे। तो मैं एक दिन उनको पूछा, भाई साहब आप कैसे तपस्या करते हो इतने उम्र 70+ एज में भी बिल्कुल हिलना नहीं, मैं यंग होके भी मैं ऐसा ऐसा करता हूँ लेकिन आप तो हिल नहीं रहे हो, क्या आप कैसे, क्या मन में स्थिति होती। उन्होंने क्या कहा पता है, उन्होंने कहा मैं जब फर्स्ट टाइम आया था मधुबन में 91 में शांति स्तंभ में 2 बजे आके बैठा, बाबा ब्रह्मा बाबा आके विश्व का गोला हाथ में है, कहते लो बच्चे लो, मैं अदृश्य कभी नहीं भूल सकता हूं। तब से लेके आज तक मैं एक दिन भी 2 बजे उठना मिस नहीं किया, लेकिन मैं बैठता हूं तो दृश्य सामने आता है, बाबा को सामने इमर्ज करके बैठता हूं तो कब खो जाता हूं पता ही नहीं चलता है। और एक भाई आते थे वो भी 70+, वो भी बाबा के सामने ट्रांसलेट के सामने बैठ के बिल्कुल स्थिर एकदम बिल्कुल घंटों तक। मैं उनको एक दिन पूछा कि आप कैसे तपस्या करते हो, क्या सोचते हो मन में, उन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो बाबा का भोला हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं आता हूं बैठता हूं बाबा को देखता हूं कहता हूं बाबा आप बिंदु हो, मैं भी बिंदु हूं, आप भी बिंदु हो, मैं भी बिंदु हूं, आप भी बिंदु, मैं बिंदु हो जाता हूं। 2 घंटे तक 3 घंटे तक हिलना भी नहीं है, बिंदु हो जाता है। इसको कहते हैं साधना। तो हम बैठ के कितने समय शरीर को भूल पाते हैं, अगर शरीर को भूल पाते हैं और बाबा के प्यार में खो गए तो जन्म जन्मांतर के भी कर्म दग्ध हो गए और फिर हम विश्व सेवा कर सकते हैं, फिर मनसा सेवा कर सकते हैं। जो लंबे समय तक व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप लगाया जानना जानता है, सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करके रखा है, सबके प्रति दया करुणा प्रेम की भावना है, निस्वार्थ भाव है, वही मनसा सेवा कर सकता है। व्यर्थ संकल्पों का स्टॉप हो, सर्व शक्तियों का स्टॉक हो, सर्व के प्रति रहम दया की भावना हो, निस्वार्थ भावना हो, तो मनसा सेवा होगा, नहीं तो नहीं हो कर सकते। तो इसलिए अमृत वेले बैठ के पहले तो मिनिमम 2 घंटे का साधना करें। सारा दिन सभी व्यस्त रहते हैं, यहां से जाके एक नियम बनाना है कि मुझे कम से कम 2 घंटा बैठने की आदत करें, फिर सारा दिन देखना ओ एकदम वो स्थिति चलेगी, लंबे समय तक चलेगा, बिल्कुल एकदम वही भावना, वही हल्कापन, वही लाइटनेस। बाबा अंत में हमको कर्मयोगी देखना चाहते हैं, हमारा बैठा बैठा योग नहीं है साधु संन्यासियों के जैसा कहीं चले गए कहीं गुफा में बैठ गए, नहीं, लेकिन शुरुआत में अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी सीखने के लिए पहले फील्ड में जाता है अच्छी तरह से अभ्यास करने फिर जहां चलाए, ऐसे ही पहले मैं कहूंगा मेरा जो अनुभव है, पहले 2 घंटा बैठने का आदत डालेंगे तो सारा दिन बहुत सहज होगा। लेकिन इसके लिए पहले तैयारी, क्या तैयारी, एक तो स्वल्पाहारी, मैं 2 मिनट लूंगा, स्वल्पाहारी योगी अर्थात स्वल्पाहारी, ऐसे नहीं कि 6-8 रोटियां खा गए, आज पनीर की सब्जी है तो 4 कटोरी खा गए, नहीं। हम देवताएं 56 प्रकार का खाते थे, कितना कितना खाते होंगे, मैंने प्रैक्टिकली देखा हूं हमारी दादियों को, प्रकाशवाणी दादी के साथ कई बार गया हूं, हमारी बहनें तो कितने वैरायटी बनाएंगे, लेकिन दादी थोड़ी थोड़ी ऐसे टेस्ट कर लेगी। तो हम स्वल्पाहारी बने, कम कम खाएं 4 बार। बाबा का जो नियम बनाया है सवेरे नाश्ता हल्का करो, फिर अगर फल खाना है तो सवेरे उठ के अगर उठते हैं तो उस समय फल खाओ, एक्सरसाइज करो। बाबा आज किस समय में हमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर बाबा के गीतों का नामों का एक गीत बनाया, रूहानी यात्रा, आधा घंटे का गीत है, बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। आप अपने कमरे में ही इतना जगह पे आप कर सकते हो, खड़े होके हाथ पांव हिलाओ, आधा घंटा करो, देखना एकदम फिट हो जाओगे। एक्सरसाइज आधा घंटा अपने लिए देना है। और हम बाबा को याद करते हुए करते हैं तो योग है। तो एक्सरसाइज करें, उससे पहले थोड़ा फल खा लें, कोई भी फल सीजन का मिलता है, फिर नाश्ता जो भी मिलता है अंकुरित खाएं तो बहुत अच्छा है। मूंग मेथी चना आदि अंकुरित करके स्टीम कर दीजिए, थोड़ा सा हल, नहीं तो एकदम गर्म पानी में भिगो दीजिए, उसमें कभी ककड़ी डाल दीजिए, कभी टमाटर डाल दीजिए, कभी एप्पल काट के डाल दीजिए, वैरायटी बना के खाए। और जो भी घर में नाश्ता बनता है बाबा के घर में, जैसे कभी उपमा कभी पोहा, जो भी बनाओ बनाओ, कम से कम तेल हमारे थाली में 50% तक सब्जी हो तो बहुत अच्छा, उसमें वेट नहीं बढ़ेगा, शुगर भी नहीं बढ़ेगा, कुछ भी बीमारी नहीं होगी। और 11-12 बजे अगर भूख लगे तो कोई ना कोई फल खा लो, 1-2 बजे लंच करो, लंच में भी आधा प्लेट हमारी सब्जियां होनी चाहिए, सलाद सब्जियां, 1/4 चावल चपाती, 2-3 चपाती खाएं, उससे ज्यादा नहीं, जैसे बाबा खाते 3 चपाती बस। चावल खाना है तो 1 कटोरी चावल इतना, ऐसे थाली में ऐसे ऐसे नहीं डालना है, पूरा थाली भर के 1 कटोरी ही, 1 चपाती माइनस, 2 कटोरी सब्जी खा जाएं, 2 ग्लास छाछ पी जाएं, 2 कटोरी दाल पी जाएं, लेकिन चावल चपाती नहीं बढ़ाने। शाम को हल्का सा कुछ नाश्ता ले लीजिए, जैसे मधुबन में मिलता है, चाहे भुना हुआ चना ले लीजिए, भलपुरी बना लीजिए, चना चाट, थोड़ा सा कुछ। हर रात को 2 चपाती, 1 चपाती, थोड़ी सी सब्जी बस। देखिए सोते समय इतना दूध पी लीजिए, देखना एकदम हल्का फुल्का रहेंगे। और रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है, सारे ज्वाइंट्स मसल्स को एक बार घुमा देना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे दिन की अवस्था। अगर हम व्यर्थ बातों से बचेंगे, आजकल सबसे बड़ी माया है मोबाइल माया। पहले सिनेमा को सीन की मां कहते थे, आज सबके सीन की मां सबके जेब में, बहुत अंत में यही धोखा देगा ब्राह्मणों को, देखना यही धोखा देगा। बहुत जरूरी है तो बात करना, नहीं तो बिल्कुल नहीं। मैं तो कहूंगा सारे दिन में आधा घंटा ही मोबाइल यूज करके रख दीजिए, कहीं देख लीजिए किसका कॉल आया, किसका मैसेज आया, बात कर लीजिए, खत्म, यही अंत में धोखा देगा। इससे व्यर्थ से बचे, क्योंकि हम तपस्या तो कर रहे हैं, व्यर्थ से लीकेज होके जा रहा है तो फिर जीरो हो जाता है। और जल्दी सोने का आदत डालें, 10 बजे तक सो जाएं। हमारी परदादी कहती थी 10 करो बस, तो 10 बजे सो जाएं। यही बातें थोड़ी सी अटेंशन रखेंगे। अभी समय लास्ट समय है, अभी ये लास्ट समय में जो जितना तीव्र पुरुषार्थ करेगा वो बाजी ले लेगा, आगे लास्ट तो फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बहुत दिल से बधाई, धन्यवाद, आप सभी आए हैं। पावरफुल स्थिति बना के जाइए, ताकि एक साल तक एकदम यही अवस्था, पावरफुल अवस्था रहे, यही शुभकामना है। ओम शांति।